सच कह रहा हूँ डैड, शान ने दृढ़ता से जवाब दिया तो सुयश जी ने उसे टोकते हुए कहा, शान, जो किया वो अमर ने किया है, अर्जुन का कोई कसूर नहीं, तो उनसे कैसी दुश्मनी। फिर आप भूल रहे हैं कि आज अगर अंशु सही सलामत हमारे बीच है तो अर्जुन की वजह से है, हमें उनका एहसान मानना चाहिए। बिल्कुल बड़े पापा, मैं औरों की तरह एहसान फरामोश बिल्कुल नहीं हूँ, इतना कहकर उसने अर्जुन की तरफ निगाहें घुमाते हुए गंभीरता से कहा, तुमने अपना खून देकर मेरी बेटी की जान बचाई है, इसके लिए मैं एहसानमंद हूँ तुम्हारा, और अगर कभी मौका मिला तो ये एहसास मैं उतार भी दूंगा। पर अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे इस एक एहसान के नीचे दबकर मैं पुरानी सारी बातें भुलाकर तुम्हें और तुम्हारे डैड को माफ़ कर दूंगा, तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा ये एक नेक काम तुम्हारे बाप के गुनाहों पर न तो पर्दा डाल सकता है और न ही सजा से बचा सकता है, इसलिए हमसे घुलने मिलने और रिश्ता बनाने की कोशिश मत करो। शान ने अपनी बात पूरी ही की थी कि आरवी की आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। भैया, आवाज़ सुनकर सबने निगाहें घुमाकर देखा तो गेट पर ही आरवी खड़ी थी, जो बाहर से आती बहस की आवाज़ें सुनकर बाहर आ गई थी। अर्जुन को वहां देखकर वो खुश हुई थी, पर शान की बातें सुनकर उसका चेहरा छोटा सा हो गया। बात को बिगड़ते देखकर आखिर में उसको बीच में बोलना ही पड़ा। आरवी को देखकर अर्जुन ने आगे बढ़कर उसको गले से लगा लिया, वहीं शान ने अपना चेहरा फेर लिया। तू ठीक है? अर्जुन ने उससे दूर होते हुए उसे सवाल किया, जिस पर आरवी ने सभी लाते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, और अब अंशु भी ठीक है, आप मिलेंगे उससे? अगर तुम्हारे पति को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तो मिलने को राजी हूँ। अर्जुन की बात सुनकर आरवी की नज़र शान की तरफ घूम गई और अगले ही पल शान वहां से उठकर चला गया। आरवी अर्जुन को लेकर अंदर चली गई। अंशु आंखें बंद किए लेटी थी। आरवी उसके पास आ गई और प्यार से उसके गाल को छूकर बोली, अंशु बेटा, देखिए आपसे मिलने आज आपके मामा आए हैं। अंशु ने हौले से अपनी आंखें खोली तो आरवी ने मुस्कुराकर अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंशु, ये मम्मा के बड़े भाई हैं और आपके मामा। मामा? अंशु ने उसकी बात दोहराई तो आरवी ने सहमति में सर हिला दिया। अर्जुन अब आगे आ गया और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, कैसा है हमारा बच्चा? बेबी अच्छी है, पर मामू आप कहाँ थे? आप कभी बेबी से मिलने नहीं आए? मामू को आपके बारे में पता ही नहीं था बच्चे, पर अब मामू आपसे मिलेंगे भी और चॉकलेट और गिफ्ट्स भी देंगे। अर्जुन ने इतने प्यार से जवाब दिया कि अंशु उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। अर्जुन कुछ देर उसके पास रुका और उससे बात करता रहा, फिर दोबारा आने का बोलकर चला गया। रात हुई तो आरवी और शान अंशु के साथ रुक गए, बाकी सब वापस घर चले गए। आरवी अंशु के पास रुकी, वहीं शान वेटिंग रूम में चला गया। यूं ही दिन बीतने गए, देखते ही देखते 6 दिन बीत गए। इन 6 दिनों में आरवी कभी भी अंशु से दूर नहीं रही, सारा सारा दिन उसके पास बैठी रहती, जब वो सोती तभी घर जाकर नहाकर जल्दी से वापस आ जाती। शान भी यहीं से अपना काम संभाल रहा था, दिन में सब वहीं रहते पर रात में शान और आरवी ही रुकते, बाकी सब घर चले जाते। बाकी सबके साथ अर्जुन भी कई बार उससे मिलने आया और शान ने रोका भी नहीं। अंशु की कंडीशन ठीक हो रही थी, उसके सारे टेस्ट हो चुके थे, सब ठीक था। जख्म गहरे थे तो भरने में वक्त लगने वाला था, हिदायतों और दवाई का ध्यान रखने के लिए कहने के बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज के लिए कह दिया। आज अंशु को दोपहर में डिस्चार्ज मिलने वाला था, बाकी सब घर पर थे और शान डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा था। आरवी ने अंशु को नहलाकर तैयार किया और ध्यान रखा कि सर पर पानी न डले। इतने में नर्स अंशु का खाना लेकर आ गई और दवाई भी रख दी, फिर वापस चली गई। आरवी ने अंशु को तैयार करने के बाद उसको बेड पर बिठाया और जैसे ही खाना लेने के लिए मुड़ी, अंशु ने पीछे से भारी गले से कहा, मम्मा दुख रहा है। आरवी तुरंत उसकी तरफ पलट गई और घबराई हुई सी उसको देखते हुए उसके गाल को छूकर चिंता भरे स्वर में बोली, क्या दुख रहा है बेटा? अंशु ने उंगली से सर की तरफ इशारा कर दिया। आरवी की नज़र उसके सर पर गई जहां अब भी पट्टी बंधी हुई थी। वो कुछ जवाब नहीं दे सकी, गला भर आया था। फिर उसने खुद को संभाला और उसके गाल को सहलाते हुए प्यार से समझाते हुए बोली, बेटा चोट लगी है इसलिए दर्द हो रहा है, अभी आप खाना खाएंगी फिर मम्मा आपको दवाई खिला देंगी, फिर दर्द खत्म हो जाएगा, और अगर आप दवाई वक्त पर लेंगी तो जल्दी ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और फिर दर्द भी छू हो जाएगा। आरवी ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया और सूप का बाउल लेकर उसके पास चली आई। उसने स्पून अंशु की तरफ बढ़ाई पर अंशु ने खाने के लिए मुंह नहीं खोला और इनकार में गर्दन हिलाते हुए बोली, मम्मा ये नहीं खाना, दलिया खाना है, मीठा मीठा आपका बना। आरवी की आंखों में आंसू आ गए ये सुनकर। सब कुछ उस दलिये से ही तो शुरू हुआ था, ना वो उस दिन अंशु को अकेला छोड़कर दलिया बनाने गई होती और ना ही अंशु उठकर उसको ढूंढते हुए नीचे आती और ना ही गिरती। उस एक गलती के लिए वो आज तक खुद को माफ नहीं कर सकी और आज फिर वही सब बातें उसे याद आ गई थी।
उसका गला रुंध गया, पर अंशु के सामने वो रोना नहीं चाहती थी, वरना वो दुखी होती, परेशान होती, जो उसके लिए अभी ठीक नहीं था। इसलिए उसने अपने आंसुओं को पी लिया और बड़े ही प्यार से बोली, बेटा बस थोड़ा सा खा लो ताकि मम्मा आपको दवाई दे दे और आपका दर्द ठीक हो जाए। फिर अभी हम घर जाएंगे तो मम्मा आपके लिए अपने हाथों से दलिया बनाकर आपको खिलाएगी। अंशु इस बात पर राजी हो गई और बिना नानुकुर किए सूप पीने लगी। दरवाजे पर खड़ा शान दोनों को देख रहा था। उसने सारी बातें सुनी थी और जिन भावों को आरवी अंशु से छुपा गई थी वो भी समझ गया था। इन दिनों में ऐसा एक दिन नहीं गया था जब घर जाकर आरवी रोई नहीं थी। अंशु को इस हालत में देखना उसके लिए असहनीय था। यहां तो उसके सामने खुद को संभाल लेती, पर शान की कही बातें भूली नहीं थी वो। खुद को माफ नहीं कर सकी थी और घर जाते ही उसका सब्र जवाब दे जाता था। शान सब जानकर भी अनजान बना रहता। आरवी का वात्सल्य, स्नेह, ममत्व और प्रेम देखकर किसी का भी भावुक होना और उस पर दया करना स्वाभाविक ही था। शान को भी अब एहसास हो रहा था कि उसने गुस्से में और भावनाओं में बहकर आरवी को लेकर कितना कुछ गलत कह दिया। वो बहुत अच्छे से जानता था कि आरवी के लिए अंशु क्या है और उसको इस हाल में देखकर आरवी पर क्या गुजर रही है। उसका दुख उससे कम तो नहीं था, पर अब जो एक बार मुंह से निकल गया उन शब्दों को वापस तो नहीं लिया जा सकता था। उसने न तो दोबारा इस बारे में आरवी से कुछ कहा और ना ही उसको कुछ समझाने की कोशिश ही की। आज भी उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद अंशु के साथ दोनों घर के लिए निकल गए, जहां सब बड़ी ही बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रहे थे। उनके घर पहुंचने पर अर्पिता जी ने अंशु की नजर उतारी, फिर सब अंदर चले आए। आरवी किचन की तरफ बढ़ गई जबकि बाकी सब वहीं बैठे थे। कुछ देर बाद वो दलिये का बाउल लेकर आई, जिसे देखकर अंशु खुश हो गई। आरवी ने अपने हाथों से उसको दलिया खिलाया, फिर आराम करने के लिए रूम में चली गई और खुद भी उसके पास बैठी उसके माथे पर हाथ फेरती रही। शान एक बार रूम में आया था। आरवी को अंशु के साथ सोता देखकर वो खामोशी से वापस चला गया, क्योंकि जानता था कि इन दिनों ना तो आरवी ने ठीक से खाना खाया है और ना ही सोई है, जिस वजह से उसकी तबीयत भी कुछ खराब रहने लगी थी, पर उसने किसी को कुछ बताया नहीं था।
खैर, दिन गुजरा। आरवी सीधे शाम को उठी। तब तक अंशु उठकर बैठ चुकी थी और उसे ही देख रही थी। अंशु उसे देखकर मुस्कुराई तो आरवी ने भी मुस्कुराकर उसका माथा चूम लिया। इतने में शान ने रूम में कदम रखा और अंशु को लाड करते हुए रूम से लेकर चला गया। बड़े दिनों बाद आज सबने साथ बैठकर नाश्ता किया। कुछ बातें हुईं। अंशु के साथ हुए हादसे से एक काम अच्छा हुआ था। परिवार में जो मनमुटाव आ गए थे वो भुलाकर सभी एक दूसरे की परवाह करने लगे थे, बात करने लगे थे एक दूसरे से। रात हुई तो सब अपने अपने कमरों में चले गए। आरवी ने अंशु को सुलाया और खुद भी लेट गई तो शान दूसरे तरफ आकर लेट गया और आज भी उनके बीच कोई बात नहीं हुई। अगली सुबह 7 बजे के करीब सब हॉल में इकट्ठे हुए। सुयश जी ने सबको वहां बुलाया था। अंशु के साथ छाया थी, सबके बीच शान भी बैठा था और सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। कुछ देर वहां गहरा सन्नाटा पसरा रहा, फिर सुयश जी ने अपनी खामोशी तोड़ी और गंभीर लहजे में बोले, शान, अब हम सारी सच्चाई जानना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार आप हमसे कोई झूठ नहीं कहेंगे। जी बड़े पापा, तब हालात ऐसे थे कि मुझे झूठ कहना पड़ा, पर अब मुझे झूठ कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज आप सबको सब सच सच बता दूंगा। इतना कहकर उसने गहरी सांस छोड़ी, जैसे बीता कल जिसने उसे सिर्फ दर्द दिया था उसे एक बार फिर याद करने और उस दर्द को सहने के लिए खुद को हिम्मत दे रहा हो। फिर गंभीरता से कहना शुरू किया, अंशु अंश भाई की बेटी है और वो उनकी कोई नाजायज औलाद नहीं है, बल्कि उनके प्यार और रिश्ते की पवित्र निशानी है। भाई ने किसी को इस बारे में नहीं बताया था, पर उन्होंने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई थी। भाई से बढ़कर दोस्त का रिश्ता था हमारा। उन्होंने ही मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया था, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। अपनी आखिरी फिल्म में वो जिस लड़की के साथ थे उन्हीं के साथ रिलेशन में थे। भाई तो उनसे सच्ची मोहब्बत करते थे, पर वो लड़की उन्हें अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल कर रही थी। उस मूवी के लिए भाई आउट ऑफ इंडिया गए थे और उस लड़की ने वहीं उन्हें अपनी बातों में फंसाकर उनसे शादी कर ली, जिसका कोई सबूत नहीं था। भाई ने आपको और बाकी सबको बताना चाहा, पर लड़की ने ये कहकर उन्हें रोक लिया कि फिल्म हिट जाने पर सबको ये गुड न्यूज़ देंगे। भले ही रिश्ता दुनिया और आप सबके सामने नहीं आया था और वो लड़की बस उनका इस्तेमाल कर रही थी, जिससे भाई अनजान थे, पर भाई के लिए वो उनका प्यार और उनकी वाइफ थी और उनके बीच पति पत्नी का रिश्ता भी था। अगर फिल्म हिट जाती तो शायद इतना कुछ होता ही नहीं और भाई खुशी खुशी अपनी वाइफ से आप सबको मिलवाते और हमारे बीच होते, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और फिल्म बुरी तरह पिट गई और उसके बाद उस लड़की को भाई बेकार नजर आने लगे। टू बी कंटिन्यूड।